और कठोर बहुत सारे मुस्का रूपा देता है, और कभी कभी जंगल में इसको कठोर दांत वाली मक्खियां और मच्छर काटते हैं। ये मक्खी और मच्छर कौन है? निंदा करने वाले लोग अथवा सरकारी आदमी, कभी कभी वो टैक्स लगाते हैं या धान ले जाते हैं, जो भी हमारा धान ले उसको मच्छर कहा गया है और दंश मक्खी। ये धान है, बाहरी प्राण है, बाहरी प्राण है। हम तो सांस से जी रहे हैं लेकिन ताकत में कुछ प्राण रहता है। कहीं जाएंगे देश विदेश, अगर बाहरी प्राण न हो तो मर जाएंगे, कहीं भी नहीं घूम सकते। तो भागवत में भी आए हैं तो जरूर है, जिनके पास सवारी नहीं है, सवारी है भी तो भी कुछ बाहरी प्राण लेकर चले होंगे। ये दोनों प्राण मिलकर हमको जिला रहे, तो इस प्राण को मच्छर और कठोर दंश छिनते रहते हैं। देखे आए इस बात में, तो कभी कभी जंगल में गंधर्व नगर देखने लगता है। गंधर्व नगर, तो गंधर्व नगर का अर्थ है कि पहले के परिवार के अपने मरे हुए लोगों की याद करता है, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे वो ऐसे थे, हमारे वो ऐसे थे, मैं बहुत बड़े कुल का हूं, ये हूं वो, इसको गंधर्व नगर कहते हैं। और कभी कभी आसुर मुकम अज्ञा बेताल, जंगल में रहने वाले आग उगलने वाले पिशाच को देखता है और उसके पीछे चल रहता है। यह पिशाच क्या है? गोल्ड, सोना। प्रत्येक आदमी सोना प्राप्त करने के फेर में है, लेकिन जरूर प्राप्त करता है तो ही वो नष्ट कर दिया जाता है, उसके द्वारा मार दिया जाता है। सोना प्राप्त करते ही सारे अवगुण आ जाते हैं, उसका विवेक आदि नष्ट हो जाता है। यही अर्थ है, सब व्याख्या बाद में आएगी। निराश तो द्रोणक निर्दिष्ट होते तो धारती भोटान, जंगल में यहां से वहां घूमता रहता है, यहां से वहां, न्यूयॉर्क से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, और सिडनी, मेलबोर्न, इधर उधर आरक्षण करा करा करके इस जंगल में घूमता है। धारती वास्तव में जब हम सवारियों से चलते हैं तो हम उस देर से दौड़ रहे है कि नहीं? तत्व बैठे हैं गाड़ी के डिब्बे में, हवाई जहाज में, लेकिन तत्व को देखा जाए तो उस वेग से आदमी दौड़ रहा है। किस लिए? निवास तो द्रोणक बुद्धि, यहां घर बनाना है, घर के लिए दौड़ता है, पानी के लिए, पानी की व्यवस्था करनी है, पीना है, खाना है, द्रव्य धन स्वजन आदि के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता है इस जंगल भावपन में। और क्वचित चवात थितपांश धूमरा, कभी कभी इस बल में चक्रवात उठता है बहुत जोर से और आंखों में धूल भर जाती है, आंख मन लगता है देखता नहीं है। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात अपनी पत्नी का सौंदर्य। कभी कभी आदमी के अंदर इतनी काम वासना उठ जाती है कि वह विषाणु के साक्षी देवताओं को भी नहीं देख पाता है, और बहुत और शास्त्र की मर्यादा तोड़ करके स्त्री सहन करता है। इसका अर्थ ये है, उसकी आंखों में पत्थर, बालू और धूल भर जाती है, मतलब विवेक नष्ट हो जाता है, देख नहीं पाता। स्त्री का जो सौंदर्य है वो है चक्रवात, बवंडर, धूल उड़ा करके आंख को नष्ट कर दे, नष्ट नहीं मतलब आंख में धूल भर जाती है। वो भी नहीं विचार करता है कि ये दिन है, रात है, देवता देख रहे हैं, और सब हमारे उनके कर्मों को देवता देख रहे हैं। सब जगह भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया, तो कम से कम उनसे शर्म करना चाहिए, उनसे भय करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। और जब बवंडर में फंस गया तो अब क्या? अब दूसरों में जाने तो रजस्व अक्ष, रजस्व अक्ष उसकी अक्ष, उसकी आंख जो होती है रजोगुण से भर जाती है, धूम से भर जाती है। और दिशा में जाना थी, इसका शेष अर्थ है कि इतना अभिवृद्धि हो जाता है, इतना कि रजस्वला पर भी आंख रखता है, रजस्वला अक्ष, इतना अभिवेक हो जाता है इसकी, इतनी बुद्धि खत्म हो जाती है कि अपने रजस्वला स्त्री के साथ भी संग करना चाहता है, पापी, इतना ये बवंडर का कारण होता है। और अदृश्य झिल्ल स्वकर्मशील, कभी कभी जंगल में चलता है तो नहीं दिखाई पड़ने वाले झींगुर जो जंगल में रहते हैं बहुत कर्कश आवाज करते हैं बरसात के दिन में, तो जंगल में तो हमेशा बोलते रहते हैं झींगुर कहते हैं, अदृश्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, कानों में इनका जो स्वर है वो सुन जैसा लगता है। तो ये झिल्ली कौन है? वो है परोक्ष में निंदा करने वाले, सबके आलोचक कुछ न कुछ होते ही है, कोई भी हो चाहे प्रभु राज्य हो चाहे भगवान कृष्ण हो, सबकी निंदा करने वाले संसार में होते हैं। तो उनको अदृश्य झिल्ली कहा गया, सामने नहीं निंदा करते हैं, तो परोक्ष में है वो है और नाना प्रकार के दोष कहा देते हैं, और उसको आदमी न्यूज पेपर में पढ़ता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की भी निंदा होती है, उनके पास न्यूज पेपर जाता है, वो तो इतने पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर पढ़े तो उसमें उनकी प्रशंसा से ज्यादा गाली रहती है। तो उसको परोक्ष का शत्रु कहते हैं जो निंदा करता रहता है, जो जंगल में झिंगुर है बोलते रहते हैं, और उन्हों के बाद भी व्यक्तांतर आत्मा और जंगल में कहीं कहीं मंदिर है, वो सामने बोलते हैं हो करते रहते हैं, तो उससे भी व्यथित अंतरात्मा इसका हृदय डर जाता है। ये सामने निंदा करने वाले सामने गाली देने वाले लोग इल्लू हैं, आते हैं निंदा करते हैं वो हैं इल्लू। तो सामने भी निंदा करने वाले होते हैं, उसमें करने वाले और परोक्ष में भी करने वाले होते हैं, सब तरह होते हैं। अपूर्ण वृक्ष हम सैकड़ों सुधार देते, कभी कभी भूख से व्याकुल हो जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है तो ऐसे वृक्षों की शरण लेता है जो जहरीले फल वाले अपूर्ण वृक्ष कहते हैं। भूख से व्याकुल है, देखा कि इस वृक्ष में फल लग रहा है तो तोड़कर खाया और खा करके बेहोश हो जाता है। तो अपूर्ण वृक्ष का अर्थ है कभी अगर धन की जरूरत हुई कुछ चाहिए तो ऐसे लोगों से याचना करता है जिनके द्वार पर जाना भी पाप है वास्तव, और देंगे नहीं बल्कि और ऊपर से कठोर वाद बरसा देंगे। कभी मांगने जाएंगे तो ऐसे ऐसे नलायक वृक्ष हैं इस दुनिया में, धनी धनी वृक्ष जो देंगे नहीं ऊपर से और दो चार वाक्य बोल देंगे कि मर्माहत हो जाएगा जी, जैसे जहरीला फल खाकर के बेहोश हो जाता है आदमी, वैसे धनियों के दरवाजे पर जाइए मांगने के लिए तो नहीं नहीं चले चले हमको समय नहीं, और थोड़ा सुनो तो नहीं 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 मैं हमें समय नहीं, पेट पालने के लिए साधु बने गए और ये ऊपर से और दो घन चला दिए, और नहीं देना है नहीं देना है मत दो, लेकिन ऊपर से ये तो वो होता ही रहता है। तो अपूर्ण वृक्षों का आश्रय मतलब कृपण और दूषित आचरण वाले लोगों का आश्रय लेता है कि हमारा सहारा बनेगा, ये बनेगा इस संसार में। मरीचि तोड़ा नहीं भावते कथित, और कभी कभी मरीचि तो मृग मरीचिका की तरफ दौड़ता है, देखता है कि वहां पानी है पानी है, लेकिन वहां पानी रहता नहीं है, सूर्य की किरणों के प्रतिफलन के कारण पता लगता है वहां पानी है पानी है, मृग दौड़ते हैं इसी तरह से दौड़ता है, वहां सुख है वहां सुख है वहां सुख है, ये जानता है, और वहां पहुंचने के बाद पता लगता है वहां पानी नहीं है, तो फिर वहां देखता है। तो जिस विषय को वह बनिया भोगना चाहता है संसार में, भोगने के बाद कहता है और यहां सुख नहीं है, तो दूसरे वस्तु के प्रति दौड़ता है, वहां पहुंचने पर वहां भी सुख नहीं है। सबका यह अनुभव है, हम सभी वास्तव में बनिया हैं, और यहां दौड़े यहां सुख नहीं है वहां सुख नहीं वहां सुख नहीं, फिर भी दौड़ते रहते हैं, आइए चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और कोचित बीते सुनते भी आते, कभी कभी प्यास लगती है या नहाने की इच्छा होती है तो बिना जल की नदियों में कूद पड़ता है, जल नहीं है लेकिन कूद पड़ा, तो जल नहीं है तो कूदने से होगा तो हाथ पैर टूटेगा सिर फूट जाएगा, यही तो लाभ होगा। तो कभी कभी जल की आशा से मतलब सुख प्राप्त करने की आशा से, समृद्धि प्राप्त करने की आशा से मनुष्य पाखंड मार्गों की शरण लेता है, वैष्णव न बन करके कोई दूसरा हो जाता है, तो विरोजन की नदी है, वहां जाने से क्या होगा, हो सकता है धन हानि हो जाए, कुछ धन भी दिया और चेला बने सब किया और बाद में आह बाप आह बाप ये तो कुछ नहीं किया गुरु को भी गाली दे तो गुरु तो था ही नहीं हो बीते यार इसकी व्याख्या विस्तार से आएगी बाद में चला कि हमारा प्रमुख बनेगा हम सुखी हो जाएंगे और वहां आश्रम में गया और वहां जाते इसका सारा धन वो लोग ले लिए और कुछ हनुमान भी नहीं दे भगवान का जाता भी करने को नहीं कहे कहा बस गुरु बना लिए पार हो जाओगे तो ये बोले जल की नदी उसमें जाना अच्छा था जाने पर तो निश्चित सिर फूटेगा जल नहीं है जिस नदी में और बहुत ऊंचे तट से कोई कूद रहा है तो सिर तो फूटे रहे पहले सिर फूटे रहा क्योंकि सिर भारी रहता है अगर आप किसी आदमी को फेंकिए ऐसे तो सिर नीचे हो जाएगा तो भारी वस्तु बस पहले सिर फूटेगा इसके बाद हाथ पैर टूटेगा बस यही कमाई करके चला आए वैष्णव पंथों के अलावा जितने पंथ है उसमें हानि के अलावा और कुछ नहीं जो हानि हो जल चाहिए तो मोह मोहमंत है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नहाइए इसको पीजिए इसमें अपार जल है गंगा जी जैसा भरा हुआ है कोई भी शांत हो सकता है कोई भी तृप्त हो सकता है नाम जप में रुचि है नाम जप कीजिए भागवत सुनने की रुचि है भागवत सुनिए पढ़िए भगवत प्रसाद खाइए भगवान का दर्शन कीजिए भक्तों के साथ नाचिए गाइए अगाध जल है लेकिन इसके अलावा और जो वैष्णव पंथ है वो तो ठीक है लेकिन उसमें भी गाध जल है अगाध नहीं कम ही जल है लेकिन हाथ पैर से तो नहीं फूटेगा लेकिन पूरा उदाहरण नहीं कर पाएंगे अगाध जल से भरा हुआ है सरोवर यह चैतन्य महाप्रभु का पंथ सब कुछ भक्ति वशामृत सिंह इसमें यही हमारा बेसिस ग्रंथ भिक्षार्थ बेसिस अपार रस से भरा हुआ तो बिना जल के नदी में नहीं कूदना चाहिए जो कूद गए हैं हाथ पैर टूट गया है उनको ला करके इस अस्पताल में दाखिल करना चाहिए कि और ठीक हो जाए परस्परम चल सकते निरंध है और कभी कभी निरंध है जब भोजन नहीं मिलता है इसको तो ये परस्पर में याचना करता है मांगता है कि हम तुम हमको तुम उधार दे दो कुछ दिन के बाद तुमको दे दूंगा ये केवल भोजन से ही मतलब नहीं कई प्रकार के विषय को आदमी मांगता है कि आप हमको लोन दे दें उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा फिर ये करूंगा ये तो परस्परम न सत्य निरंतर कमी होने पर मांगता रहता है आशा दुदारण कुछ देर में तब तो कभी कभी जंगल में चलता हुआ ये बनियों का समुदाय बनियों का समुदाय के पूरे जीव ब्रह्मांड को कभी कभी दवानल में प्रवेश कर जाता है दवानल में आग लगी रहती है और पता नहीं रहता है और चारों तरफ से आग पकड़ लेती है इसको तो दवानल क्या है अपना घर आगे बताया जाएगा अपना जो घर है अपना घर वो है दवानल आदमी बाहर रहता है शांति से रहता है लेकिन जो ही घर आता है तो ही जलना चालू हो जाता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये बेटा फिरंत हो गया याज्ञा नहीं मान रहा है ये नहीं हुआ ये देखी हुई बात है और जगह आदमी शांति से रहता है लेकिन घर आते ही मूल तेल लकड़ी की फिक्र लग जाती है ये करो वो करो ये बिल दो वो दो और मनमानी भोजन भी नहीं मिल पाता है वो सोचेगा ये बनाना चाहिए था और स्त्री बना देगी थर्ड क्लास का भोजन तो वही जरूर लगता है बाहर ममता नहीं होती इसीलिए आदमी सब कुछ सह लेता है आप ट्रेन में जा रहे हैं धक्का हो रहा है खड़े हैं लेकिन दुख नहीं होगा और घर पर आने पर अगर स्त्री बैठने को आसन न दे तो आप जलने लगेंगे क्योंकि ममता यह है कि ये मेरी है मेरा ध्यान क्यों नहीं रखी किस लिए हमारे घर में आई है मर गया इन लोगों के लिए कमा करके ये करके फिर भी ये लोग हमको नहीं खींचते, लड़का खींच लिया है कि वो तो पानी नहीं दे सकता है, बाहर वो तो पानी अपने ही मांग रहे थे किसी से, स्वयं पी रहे थे शांति से मुक्त थे, लेकिन इस तवाने में प्रवेश करते ही जलना पड़ता, इसमें संदेह नहीं है कि रास्ते में अपना घर दयानु चिंतित होता है। आशब्द गायन कुछ लोग निर्मित देते कुछ जक्ष होता है, और कभी कभी जक्ष जो इसके बाहरी प्राण को हर लेते हैं तभी हमें भी विरक्त होता है, दुख लगता है, तो संसार दुखमय है। तो कभी कभी सरकारी आदमी या कोई दूसरा चोर डाकू जब बाहरी प्राण हर लेता है, धन चला जाता है, तो इसको वैराग्य होता है कि दुनिया दुखमय है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये विरक्त हो जाता है। सूर्य हितस्व कुछ निर्मय होता है, कभी कभी वीर लोग उसके धर्म को हर लेते हैं, यहां वीर का अर्थ है सरकार, सरकार वारंट करके कुर्की वारंट करके कभी कभी धर्म हर लेती है, तो उस समय भी निर्णय होता है कि दुनिया बेकार है, बड़ा दुख है, लेकिन विरक्त नहीं होता है, केवल दो काम ही करता है, सोचल विमोहन उपजाति कौशमलन, शोक करता है, मोह में पड़ता है, मूर्छित होता है, विवेक खत्म हो जाता है, क्वचित गंधर्व पुरम प्रविष्ट, कभी गंधर्व नगर में प्रवेश करता है, यहां गंधर्व नगर में प्रवेश का मतलब है कि कभी अपने परिवार में बाल बच्चों के साथ बैठता है तो अपने को बड़ा सुखी मानता है, ये मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, ये है ओ ठीक, इसको गंधर्व नगर में प्रवेश करना कहते हैं। एक बार गंधर्व नगर को देख रहा था, ये भवन है, यहां भवन में प्रवेश करता है, सौ ऑफिस से छूट करके आकर के अगर शाम को रात में एक जगह सारा परिवार बैठता है, लड़का भी कहीं कॉलेज से आ गया है, बहू भी है, सब है, तो एक बार मनभव होता है ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट, हमारा घर बिल्कुल सुखी, इसको गंधर्व नगर में प्रवेश कर, लेकिन गंधर्व नगर तुरंत अदृश्य हो जाता है, ठहरता नहीं है, आकाश में उदित होता है और नष्ट हो जाता है, ये सुखमय की हस्ती रहेगी नहीं, इसे नष्ट होना है, इन कभी कभी प्रवेश करके अपने को सुखी देखता है। तो चलन कुचित कंटक सक्रांगी नगर रूक्षित दुर्मी हस्ते, कभी कभी जब चलता है जंगल में तो पैरों के नीचे कंटक पड़ते हैं, कांटे पर चलना पड़ता है, और शर्करा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रहते हैं, हम लोग जंगल में प्रचार किए हैं, जानते हैं कि कैसे कांटे पड़ते हैं और शर्करा, तो उस समय उसके चरणों में बड़ी पीड़ा होती है, शर्करा ये जो घर गृहस्थी का काम धंधा है इसको करने में भी अनेक कठिनाई होती है, यही है कांटा और पत्थर चुभना, काम करने चलते हैं लेकिन कुछ न कुछ दुख होता रहता है, चुभता रहता है, फिर भी चलना है, क्या करेगा, करना ही, ये चुभते रहते हैं, और नगर वृक्ष दुर्मय वस्त्र, कभी कभी यह पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, ऊंची चढ़ाई पड़ती है, लेकिन रास्ते में पड़ गया है तो करे क्या, तो पहाड़ को लांघना पड़ता है इसे, नग आर वृक्ष, नग पर्वत को कहते हैं, अचल नग चलती, जो कहीं जाता नहीं उसको नग कहते, चल रहा है दुनिया का समुदाय और पहाड़ पड़ गया, एकदम खड़ी चढ़ाई और उस पर भी चढ़ना चाहता है, चढ़ेगा तो गिरेगा लेकिन चढ़ना चाहता है, तो ये पहाड़ की चढ़ाई क्या है, जैसे दूसरे लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, जन्मोत्सव या विवाह करते हैं, खूब खर्च करते हैं, जग करते हैं, दान करते हैं, तो यह वैक समुदाय सोचता है कि हम भी करें, लेकिन उसके पास धन रहता नहीं, धन नहीं रहता है तो इसके लिए पर्वत की चढ़ाई के समान पड़ता है, और कभी चढ़ा भी थोड़ा तो गिर पड़ता है, मतलब कई हजार लाख कर्ज हो जाता है, चढ़ा भी तो फिर गिर जाता है मतलब वो कर्ज हो गया, विवाह करने में, यज्ञ करने में, और भी जन्मोत्सव करने में कर्ज हो जाता है ना, ये तो जनरल बात है, सब शहरों में लोग कम करते हैं, गांव में तो हमेशा कर्ज हो जाता है तो दूसरों के देखा देखी इस तरह से तीर्थयाटन करना, तो वो घर वाला चारों धाम कर आया तो अब हम भी इंद्र लेकर के भी चारों धाम करा देंगे अपने माता पिता को, या हम भी करेंगे। यानी वो है पर्वत की चढ़ाई, चढ़ना ही, अब क्या करेंगे, चढ़ा नहीं जाता है लेकिन चढ़ना पड़ता है। और कभी कभी भयंकर ग्रहण में आ जाता है, जहां भी जाता है तो पर्वत ये भीतर की आग से तो जलता ही रहता है, भूख तो लगती ही रहती है। अब भयंकर बहन में बहन आग, बाहर का दवाना तो जलता ही है तो भीतर भी आग जलती रहती है। भीतर की आग, यह आग ऐसी है ईंधन दीजिए तो दो चार घंटे शांत रहेगी, इसके बाद फिर चलेगी। और इसी आग को बुझाने के लिए इतने विश्व में रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, घर घर में पकाओ खाओ, दुकानें भरी हुई हैं आग से लड़ने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आग लगी है पेट में। तो जब आग लग जाती है उसके पेट में, और उस समय अभी कुटुंब वाला बनिया है, कौटुंबिक, कौटुंबिक अर्थ है अपनी पत्नी है, अपने बेटे हैं और सब हैं, और यदि टाइम से खाने को नहीं मिला तो क्रोधति क्रोधित हो जाता है। आदमी बाहर रहे तो भूख सह लेगा जहां खाने को नहीं मिले, लेकिन परिवार में है और खाने को टाइम से नहीं मिला तो क्रोध, एक तो पेट की आग से चल रहा है, दूसरे क्रोधाग्नि से भी चलने लगता है। यह दिन बिल्कुल सख्त विषय है, थोड़ा भी लेट हो गया तो बस क्रोध करता रहता, क्रोध करता रहता। क्रोध तो कौटुंबिको शब्द है, तो इसकी भावना है कि ये सब मेरे हैं तो किस दिन काम आएंगे, जब टाइम से भोजन भी नहीं दे सकती है। यह सोच करके दुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है, ममता के कारण दुख होता है। जॉइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में हमने देखा है, गांव में या अपने घर में भी कभी कोई भगवान किसी पति को तो कहता है, और कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, यह क्यों नहीं ध्यान दी, ये तो मेरी है, ऐसा कहता है। तो क्रोध होता है अपचय ममता के कारण, और कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया, इसको तो ध्यान देना चाहिए। और वास्तव में पत्नी का कर्तव्य है पति की भगवान से भी ज्यादा सेवा करनी चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पति अपनी सारी कमाई पत्नी को दे देता है, इतने पर वो भोजन टाइम से न दे पाए तो वास्तव में किस लिए है। पति को बहुत संतुष्ट रखना चाहिए, खिला पिला करके कहे ठीक है, हंसते हुए पिला करना चाहिए, जिसमें बाहर सुख से रहे और आते ही घर में उसे अनुभव न हो कि मैं दवाने में घुस गया। उसको एसी रूम बनाकर रखना चाहिए घर में, हस्ती दवा भी नहीं। यह पत्नी पर निर्भर करता है, एक्सपर्ट पत्नी जो है वह पति के लिए सबसे बड़ा सहारा है। द्रौपदी जी ने कहा है कि हमारे पांच पति हैं, लेकिन मैं इतना सावधान रहती हूं कि हमसे प्रसन्न रहते हैं। भगवान की पत्नियों ने उसे सीखा, वो कहे बहन हमारे पति एक हैं और हम 16108 हैं, और तुम्हारे पति पांच हैं तुम एक हो, तो हम इतना मिल करके भी कृष्ण को संतुष्ट नहीं रख पाती, वो प्राय चले जाते हैं बाहर। अगर हमारी सेवा से संतुष्ट रहते तो द्वारका नहीं पड़े रहते। तुम्हारे भीतर क्या योग्यता है कि एक होकर कभी पांच को संतुष्ट रख रही है। तो द्रौपदी जी ने प्रवचन किया है कुरुक्षेत्र में, महाभारत में लिखा गया किस उपाय से मैं अपनी पत्नियों को संतुष्ट रखती। तो पत्नी की योग्यता पर निर्भर करता है कि पति को क्रोध में न होने दे, क्रोध का अवसर न आए, शांत रखे। लेकिन जो कुछ बिगड़ यहां वर्णन यह किया जा रहा है कि ऐसा होता नहीं है, बिगड़ों कोई पत्नी ऐसी होती है जो पति को संतुष्ट रखती है, नहीं तो बेचारा जलता रहता है भूख से और क्रोध से। जो जलना पड़ता है, क्यों नहीं उधार दे आगे क्या कदो कदो भयंकर भावना बताओ कौटुंबिक को धोती और जनाए जवान को अपने जन पर अपनी पत्नी पर बच्चे पर खास करके क्रोधित होता है। कभी कभी बिना मतलब कि अपने बच्चे को तमाचा मारने लगता है। हाँ कोई बेचारा गलती नहीं किया लेकिन कोई भी हो जाता है तो घर का बासन फोड़ता है स्त्री को मारता है। हमने अपने गांव में देखा है एक आदमी क्रोधित हो गया और आ करके घर का बासन पूरा फोड़ दिया भोजन बना नहीं था और फिर बासन खरीदने के लिए गया और खरीद करके लाया तब भोजन बना। कोई भोजन विवेक नष्ट हो जाता है। और कोचिंग गरीबा हुआ और अजगरा हुआ जो मारे तो किंच बिकने को दे दिया कभी कभी वन में रहता है तो इसको अजगर ग्रस लेता है और अजगर ग्रस लेता है तो इसे कुछ भी पता नहीं चलता है। वन में फेंके हुए लाश की तरह पड़ा रहता है। अजगर क्या है निद्रा स्लीपिंग रहता है 10 बजे रात होते होते अजगर पकड़ लो और वही आदमी जो इतनी चिंता कर रहा था घर गृहस्थी की अजगर के पकड़ लिए जाने के बाद अब कोई चिंता नहीं मरा हुआ पड़ा रहता अथवा इसका लिंक बाहर से उस श्लोक से है कि क्रोध करता है अपनी पत्नी को और बच्चे पर लेकिन बिना खाए रोज होकर के सो जाता है पड़ा रहता है और ऐसे जगह पर जहां पता नहीं चलता है पत्नी न देख पाए बच्चा भी न देख पाए क्रोध में सो जाता है। ऐसा होता है ना कभी कभी आदमी क्रोध में सो जाता है खाता भी नहीं है हो सकता है सवेरे वही दासी रोटी मांगे पर खाए भूख तो लोग नहीं रहती है फिर कह रहा हूं बर्बाद हो जाएगा क्या होगा वो खा लेते मुद्रा को अजगर कहा गया दस्ते में सोते कुछ दिन सूखे कभी कभी इसे सांप दोष देते हैं तो उससे बेहोश होकर के पड़ा रहता है। तो सांप कौन है सांप है गाली देने वाले कोई तो ऐसे आदमी हैं शत्रु अपने उनको सांप कहा गया शत्रु कुछ ऐसे उल्टी बोली बोल देते हैं हमें सुनता है हमारे विषय में ये कह रहा था ये कर रहा था हमारे विरुद्ध चाल चल रहा है तो आदमी बहुत दुखी होता है। ये सांप के काटने जैसा दुख होता है और अंध कृपे पदुपस्थ मिश्र उसमें अंधा हो जाता है विवेकहीन हो जाता है और उस शत्रु से बदला लेने के लिए तमिश्र में गिर पड़ता है मतलब अपना धन खर्च करके भी उसको दुख देना चाहता है और अपना धन खत्म करना अंधा का काम है अविवेक है लेकिन अपने शत्रु को हराने के लिए उसको दंड देने के लिए अपना धन लगाता कृष्ण क्षुद्र रसन बिछनी स्थल लक्षिका फिर बचित अभिमान कभी कभी क्षुद्र रस के फेर में दंड में घूमने लगता है कहीं मधु मिलेगा एक दिन में चाटूंगा खाऊंगा वन में ऐसे मिलते ही रहते हैं मधुमक्खियों का छाता लेकिन उस छाता कहते हैं हम लोग मधुमक्खियों का जो उसको मधुकोष होता है तो उसको खोजता रहता है कहां मधु मिलेगा कहां ये मिलेगा लेकिन वो मक्खी मधु की रखवाली मक्खियां करती हैं बड़े कठोर होती हैं मधु छुड़ाने वाले को चारों तरफ से मार देती हैं डंक। यह क्षुद्र रस क्या है इस संसार में परिस्त्री गमन कभी कभी अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होता है और तुच्छ रस जिसमें बहुत खतरा है बहुत खतरा रहता है अगर मक्खियों को पता लग जाए तो आंख नाक कान से मार करके फुला देगी तो काट देती है मक्खियां ऐसे ऐसे परिस्त्री या परपुरुष ये जो कामना है क्षुद्र रस है अपने पति का समागम स्त्री के लिए यह क्षुद्र रस नहीं है वह वेद शास्त्र द्वारा अनुमोदित है बाद में भी मेरे को नहीं गिनना होता है समाज भी अनुमोदन करता है लेकिन पर स्त्री का जो गमन है क्षुद्र रस है उसमें अनेक बाधाएं हैं अनेक संकट है उस स्त्री के संबंधों से बहुत संकट होता है तो तन रक्षिका भी बचते दिमाग बहुत भारी मारपीट उसकी होती है तब उस समय रोने लगता है, हाय हाय। वो रस छिड़ाने चलता है जंगल में, तब तक उस रस की रखवाली करने वाली मक्खियां काट देती है और एक बार पी भी नहीं पाता, रस बनता भी नहीं है। और ये दशा तत्व कृष्ण प्रतिलब्ध मानो बड़ा बुलंदन कष्टम तत्व, पर कभी कभी बहुत कष्ट से थोड़ा रस भी पाता है, लेकिन रस इसको मान भी नहीं लेते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा प्राय होता है कि बलपूर्वक दूसरा व्यक्ति इसके रस को छीन लेता है, डाइवर्स हो जाता है, इस तरह से होता रहता है। बलात् बुलंदन तो दूसरे लोग इसके रस को छीन लेते, दूसरा देख रहा है कि मधु चाट रहा है तो दूसरा सुन करके चाटने लगा, और भी थोड़ा नाम मात्र का उसे कोई तृप्ति से होगी नहीं। क्वचित सीता तदात वर्ष प्रतिक्रिया कर तो मनुष्य हंसते, कभी कभी शीत अधिक ज्यादा पड़ता है या घाम या आंधी वर्षा, तो इसका प्रति निवारण